Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Esha Devaha Pradisho Nu Sarvaha Purvoha Jataha Sau Garbhi Antaha Saiva Jataha Sa Janishya Manaha Pratyagdhana Stishthati Sarvato Mukha. ये प्रसंग चला श्वेताश्वतर उपनिषद का दूसरा अध्याय का 16वां मंत्र. इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है. इस प्रसंग में बतला रहे हैं एषा देव प्रदिशः. यह जो देव है कौन सा देव? वो जो पहले मंत्र में बतलाया था ज्ञत्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः. जिस देव को जान करके सभी पास माने बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे वह ऐसा देव है. यहां लेना ऐसा देव प्रदिशा. हाँ, क्या बात? ऐसा देव प्रदिशा. प्रदिशा माने दिशा और प्रदेश. एक होता दिशा, एक होता उपदिशा. उपदिशा माने जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुख्य दिशा है और आग्नेयरथ ईशान मायवीय ये उपदिशा है. तो सब के सब यही है. ईशा देवा प्रदिशा आने बात ऊपर सर्वान सर्वादिशा. पूर्वो जाता का सबसे पहले वही उत्पन्न हुआ. पूर्व कहते प्राक, पूर्व प्रथम. स वही प्रथमा जाता. प्रथमा परमात्मा ने हिरण्यगर्भ समझ लेना. स वही प्रथमा जाता पूर्वो जाता. सौ गर्भे अंत वही गर्भ में निवास करते हैं. जाना पैदा भी वही हुआ है और गर्भ में निवास भी वही करता है. अरे बात सैव जाता सन सैव जाता है. वही पैदा हुआ है. स जनिष्य वाला है. आगे पैदा भी वही होगा. आगे पैदा भी वही होगा. प्रत्येक जना स्तिष्यति ही प्रत्येक जन. हाँ, जना स्तिष्यति जना स्तिष्यति सब जना स्तिष्यति. तो प्रत्येक बात बनागा ना जना स्तिष्यति सबके भीतर रहता है. प्रत्येक देखो एक होता है पराक, एक होता है प्रत्येक. अन्य बात पराग और प्रत्यक में यह क्या अंतर है? पराग मानी बाह्य, प्रत्यक मानी अंतर. अया प्रत्यक जरा स्थिति प्रत्यक जरा उल्टा दिखता है. प्रत्यक जना क्यों? भीतर जब रहेगा ना तो उल्टा ही दिखेगा. जैसे आप समझे कि ये देख रहे हो. हाँ, अंशति गच्छति इति प्रत्यक प्रत्य अंशति गच्छति प्रत्यक. बाहर की तरफ जा करके आप देख रहे हो इसको. आप यदि आप इसको देखना चाहो अन्य बात कैसे देखोगे? आप ये रूप देखते हो, रूप सामने आ देखते हो और भीतर जाकर जब रूप देखना चाहो तो कैसे देखोगे? दाय का बाय, बाय का दाय. अभी समझो दर्पण के सामने आप खड़े हो गए तो दर्पण का जो प्रतिबिंब आप देख रहे हो, सीधा देख रहे हो कि उल्टा देख रहे हो? प्रतिबिंब है, प्रत्यय है, आनी बात ऐसे ही समझ लेना। ये उपनिषद में बतलाते हैं कि यह चक्षु न पश्यति, चक्षु गुंगसी जो पश्यति, जो चक्षु जिसको देख नहीं सकता है, चक्षु को जो देखता है, श्रोत्रम जब न यम न पश्य या श्रृणोति, श्रोता जिसको सुन नहीं सकता तो श्रोत्र को जो सुनता है, ऐसा कैसे है? सब इंद्रियां जिसको नहीं जानते हैं, यानी बात इसको कहते अंतर्जामी प्रकरण। या पृथिव्याम तिष्ठन पृथिवी अंतर पृथिवीयम न भेद पृथ्वी जैसा शरीरम यह पृथ्वी अंतर जमयते ही ऐसा थे आत्मा अंतर्जामी, यानी बात तो अंतर्जामी परमात्मा अंतस्तिष्ठति ही अंतर है करके बाहर की तरफ दिखता है। तो बाहर की तरफ से जब देखा जाए तो दर्पण के सामने जब दर्पण में पुरुष को देख रहे हो, दर्पणस्थ पुरुष को आप देख रहे हो, तो दर्पण का पुरुष आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? मानो हम सामने इधर खड़े हैं, दर्पण है, दर्पण है, दर्पण में हम मुख देख रहे हैं, तो सीधा देख रहे हैं कि उल्टा देख रहे हैं? उल्टा देख रहे हैं। क्यों? सीधा देखना था दर्पण, ऐसा होना चाहिए ना दर्पणस्थ पुरुष को, कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही तुम जो प्रत्यंग जना तिष्ठति, प्रत्यंग भीतर अंतर्जामी के रूप में रह करके आप देख रहे हो दुनिया को, तो किस रूप में देखोगे? उल्टा देखोगे। क्यों? समझ में आई ना बात? यही बात बता रहा है। प्रत्येक जना तिष्ठति, और वो कैसा कहते हैं का सर्वतोमुख, सर्वतोमुख इनका मुख कैसा है? सर्वत जैसे गीता में बतलाया, सर्वत पाणी पादम तत् सर्वतो श्री शिरोमुखम सर्वत श्रुतिमान लोके सर्वमावृत तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। आया कि नहीं गीता के 13वां अध्याय में देखना। क्यों ऐसा बोला? गेयम जत तत् प्रवक्षा में जजगत्व अमृतम अश्नुते अनादिमत परब्रह्म सत तन्न सद उच्यते। अब वहां भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि गेयम जत जस गेयम तद हम प्रवक्षामी, जो गेय वस्तु है, गेय वस्तु माने जानने योग्य। गेय दो प्रकार के होता है, ज्ञातम यज्ञम गेयम और ज्ञान अभिषेकम गेयम। जानने योग्य विषय को भी ज्ञान कहते, ज्ञा कहते, और ज्ञान के विषय को भी। और भगवान कहते ज्ञम जस ज्ञम ज्ञातुम यज्ञम ज्ञम अश्विनी व जीवन है ज्ञम, न तो जन्मांतर है ज्ञम, न कालांतर है ज्ञम, न वस्तुअंतर है ज्ञम। इसी समय में, इसी जगह में, इसी रूप में जानना, यानी बात इसी रूप में जानना। अब एक ज्ञा वस्तु यदि तुम्हारे रूप में न हो तो परिच्छिन्न हो जाएगा। ज्ञा वस्तु जिसको जानने के लिए बतला रहे ना, वो किस रूप में है? यदि इसी समय में परमात्मा इसी जगह में इसी वस्तुओं में इन्हीं वस्तुओं के रूप में न हो तो परमात्मा व्यापक नहीं होगा, परिच्छिन्न जाए। जो एक काल में रहता है, एक काल में नहीं रहता, एक देश में रहता है, एक देश में नहीं रहता, एक जगह में रहता है, एक जगह में नहीं रहता, तो परमात्मा ही नहीं होगा। याद रखो, परमात्मा नहीं होगा। क्यों? परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब रूप में तो परमात्मा ही है। हाँ, तो भगवान कहते गेयम जस गेयम तदहम प्रवक्षामि। अब यहां प्रवक्षा में शब्द जो दिया, फिर इसमें भी विचार करते हैं, वक्षा में शब्द है, वक्षा में वह प्रापण धातु से भी बनता है, बस धातु से भी बनता है। प्रवक्षा में भगवान कहते मैं वो वस्तु को लाकर तुमको ऐसा साक्षात प्रत्यक्ष करा दूंगा जो तुम कभी जान ही नहीं पाए, अथवा मैं ऐसा वस्तु का प्रवसन करूंगा जो सुनने मात्रा से तुमको प्राप्त हो जाएगी। प्रवक्ष्यामि का मतलब प्रवचन करूंगा, अर्थात तुमको सुनाऊंगा और सुनने मात्रा से तुमको मिल जाएगा। आज जो वस्तु सुनने मात्रा से मिल जाती है तो वो वस्तु तुमको पहले मिला हुआ है, ये भी बात याद रखना। सुनने मात्रा से तो मिलता है ना, तो वस्तु पहले से मिली हुई है, प्राप्ति की प्राप्ति। अगर जब तुमको सुनने मात्रा से मिल गए तो पहले मिला, अगर नहीं मिला प्राप्त नहीं था। नहीं, ना मिलने का कारण क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, जो अज्ञान है। तो भगवान कहते ऐसे वस्तु का मैं वर्णन करूंगा जिस वस्तु को श्रवण मात्रा से तुमको प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए तुमको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना। और जो वस्तु बोलने मात्रा से प्राप्त नहीं है, समझोगे नहीं, उसके लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे मैं कह दिया कि स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिवलोक है, कह दिया तो प्राप्त नहीं होगा। क्यों? वहां जाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वर्ग कैसे जाया जाएगा, वैकुंठ कैसे जाया जाएगा, शिवलोक कैसे जाया जाएगा, तो तुमको जिज्ञासा होगी। स्वर्ग है ठीक है, तो स्वर्ग जाने का साधन क्या है, तुमको साधन का अनुसरण करना पड़ेगा। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु ऐसे एक वस्तु है जो सुनने मात्र से मिल जाता है, सुनने मात्र से मिल जाता है। तो जो वस्तु सुनने मात्र से प्राप्त होता है, श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है, पहले से प्राप्त हुआ है। केवल अप्राप्ति के जो भ्रांति हो गई, वो भ्रांति को मिटाना है। अप्राप्ति का भ्रांति है, तो भ्रांति को मिटाने से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते ऐसे वस्तु का वर्णन मैं करूंगा जिसको श्रवण मात्रा से तुमको मिल जाएगा। प्रवक्ष्यामि, ठीक है, आप प्रवचन करोगे, मैं सुनूंगा, वस्तु मिल जाएगा। इससे हमारा फायदा क्या है, क्या मिलेगा हमको? तो भगवान कहते हैं जस गत्वा, जिसको जान ले, नहीं वो नहीं है, तेरहवाध्याय की बात कर रहे हैं ना। जस गत्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान लेने के बाद तुम अमृत हो जाओगे। क्या? जिसको जान लेने के बाद जस गत्वा अमृतम अश्नुते, अमृत का पान करोगे, पान करके मतलब अमृत स्वरूप हो जाओगे, जिसको प्राप्त करके हम प्रवचन करेंगे तो हम जानोगे, जानने मात्रा से तो अमृत हो जाओगे। तो मतलब क्या, तो अमृत तो पहले से है, अमृत माने पीने का अमृत नहीं, मृत्यु से परे, वो जो सर्व पार्श्व प्रमुच्यते है, सर्व समस्त पार्श्वों से मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो क्या चीज है? अनादिमत परब्रह्म, अनादिमत। तो वहां भी अनादिमत तो बहुत से वस्तु है, प्रकृति भी अनादि है, संसार भी अनादि है, जन्म मृत्यु की अनादि है, समझ के नहीं? प्रकृति अनादि है कि नहीं, जन्म मृत्यु अनादि है कि नहीं? ये प्रवाह जो चल रहा है, बीजंकुरवत, बीजंकुर अनादि है कि नहीं है? जीव भी अनादि है, जगत भी अनादि है। अनादि आपके पास कितनी वस्तु है? छह। क्या क्या है? अरे भाई ये देखो, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय में दोनों तरफ से चलता है, कथा में एक तरफ से चलते हैं। कथा होती है ना, कथा कुछ भी बोलता वक्ता बोलते चला जाएगा और तुमको हाँ हूँ हूँ करना पड़ेगा। हाँ, दादी कथा सुनाती है कि नहीं बच्चा को? तो जब तक हूं करते तब तक कथा सुनाते, अरे हूं बंद हो गया तो कथा बंद है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वक्ता पूछेगा छह प्रकार, पांच प्रकार, छह प्रकार का भेद है। ईश्वर और जीव है नहीं बात, ये भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है। अनादि का चतुर्दुर्ग षटस्मा का मनादय है। हमारे यहाँ छह वस्तु अनादि है, तो प्रकृति भी अनादि है, जीव भी अनादि है, जगत भी अनादि है, माया भी अनादि है, ये सब अनादि है। तो अनादि मत कहा तो हम किसको समझे, तो भगवान आगे बोलते अनादि मत परम ब्रह्म, ब्रह्म है। तो ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म का विशेषण लगा दिया परम, ब्रह्म कैसा है, परम क्यों लगा दिया, ब्रह्म कह दो। तो माया का भी ब्रह्म कहते, मम ज्योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम तथान्यम संभव सर्वभूतानम तत्व भवति भारत। ब्रह्म जो है प्रकृति को भी ब्रह्म कहते, माया भी करवाते, हिरण्य गर्भ कहते, वो बोले ये ब्रह्म ने कार्य ब्रह्म है ये, और ये है परम ब्रह्म। ये परम ब्रह्म अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि होता हुआ जो परम ब्रह्म होगा। तो वह सत भी नहीं असत भी नहीं, सत और नासत उच्चते, सत और असत दोनों से परे। तो ब्रह्म सत नहीं है, कल सत नहीं है, असत नहीं। कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ है, पर ब्रह्म ब्रह्म ही है, निर्विकार निराकार निर्विशेष जो ब्रह्म है ना, वो पर ब्रह्म है। निर्विकार हो हम, निराकार हो हम, निर्विशेष हो हम, देखो सत असत दोनों। भगवान कहते हैं अनादिमत पर ब्रह्म सत तन्ना सत, सत भी नहीं असत भी नहीं, आनी बात दोनों से। देखो गीता में आठवां नौवा अध्याय में साथ भगवान ने बतलाया है, सत असत से अहम अर्जुना, मैं सद भी हूं मैं असत भी हूं। तबामी अहम वर्षम उत्सिजा में निगृणामी, जो वो आएगा नहीं वहां गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरेत प्रभव प्रलसा निजानम विजयम, तपामी अहम वर्षम निगृणामी उत्सिजामी जो उसमें बतलाया है कि मैं सद भी मैं हूं और असद भी मैं हूं, अंतिम पंक्ति है। तो सत और असत दोनों का विलक्षण है यहां बतलाया, सत भी नहीं असत भी नहीं, और वहां भगवान बतलाता है सत भी मैं हूं असत भी नहीं, असत भी मैं हूं। ये जो है ना मैं जो हूं ना, सत असत दोनों का, दोनों भाव अभाव का अधिष्ठान हूं, याद रखना। सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं, सत भी नहीं हूं असत भी नहीं हूं, माने भाव और अभाव, सद असत विलक्षणम अनिर्वसनीय स्वरूपम मम। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, अनिर्वसनीय स्वरूप है। तो संसार भी अनिर्वसनीय है, संसार अनिर्वसनीय है कि नहीं, माया अनिर्वसनीय है कि नहीं, तो भगवान भी अनिर्वसनीय है। भगवान में जो, परमात्मा में जो अनिर्वसनीयता है और जगत में जो अनिर्वसनीयता है, यानी इसमें अंतर क्या है। जगत अनिर्वसनीय इसीलिए है, सद असत विलक्षण अनिर्वसनीय। जगत को सद भी नहीं कह सकते हो, असत भी नहीं कह सकते हो, सद असत दोनों को रूप भी नहीं कह सकते हो, दोनों से भिन्न भी नहीं कह सकते हो, आखिर में क्या, तो कहते अनिर्वसनीय स्वरूपम। तो माया अनिर्वसनीय होने से माया का कार्य प्रपंच भी अनिर्वसनीय है। ये जगत को तुम सत भी नहीं कह सकते हो, असत भी नहीं कह सकते हो, सत असत दोनों रूप भी नहीं कह सकते हो, दोनों से भिन्न भी नहीं कह सकते हो, महा अद्भुत अनिर्वसनीय रूपा। जिसका वर्णन करने में वर्णन नहीं कर सकते सद रूप में, जैसे ये घड़ा है, ये चावी है, इसको आप देखते हो वर्णन कर सकते हो, आनी बात सद रूप में। परंतु वो जो जगत है ना, जगत को ऐसे नहीं कर सकते हो सदरूप में, क्यों? इसीलिए नहीं कर सकते हो कि ज्ञान होने के बाद में इसका सत्यता बाधित हो जाता है। जिसकी सत्यता बाधित हो जाता है ना ज्ञान होने के बाद में, तो असत होता। देखो असत कहते बंजाभूत रखो, बंजाभूत देखा कि नहीं देखा? प्रकाश भाई ने देखा होगा, कोर्ट में देखना पड़ता है ना। देखो तीनों काल में जो नहीं रहता है ना उसका नाम असत। तीनों काल में जो है नहीं, जिसकी सत्ता नहीं, उसको असत कहते हैं। और तीनों काल में माने भूत भविष्य वर्तमान, अथवा जागरण सपना सुसुप्ति, अथवा उत्पत्ति स्थिति, ये तीन काल, तीन अवस्था, तीन व्यक्ति है। ये तीनों में से जिसके कोई सत्ता ना हो, ओम इति एतद् अक्षरम इदम् सर्वम् तस्य गोवैक्यानाम् भूतम् भवत् भविष्य सर्वम् ओंकारैव ओंकाराम पादशो विद्यात्। ओंकार ईश्वर का नाम है। ओंकार जो है ना, तस्य वासकः प्रणवः, उस परमात्मा का नाम है ओंकार। नाम नामी, बच्चा वासक, अभिधान अभिधेय, ज्ञा ज्ञा, ये सब जो एक ही अर्थ में है। नाम हुआ कौन? ओंकार। नामी हुआ कौन? परमात्मा ब्रह्म। तो ओंकार को वासक भी कह सकते हो, और ओंकार के द्वारा जिसको बोलाओगे उसको बच्चा भी कह सकते हो। बच्चा वासक भाव, नाम नामी भाव, है नहीं बात? नाम क्या से जाए? आपका नाम है गिरीश भाई, तो गिरीश भाई यहाँ सबके बीच में जब यहाँ बोला गिरीश भाई कौन है, तो आप जवाब दोगे कि नहीं? क्यों? अब आपने नाम के साथ अध्यास कर लिया, नाम के साथ आपने तादाद पर संबंध कर लिया। तो जैसे नाम के साथ गिरीश भाई के साथ व्यक्ति विशेष जो है ना तादाद पर संबंध करने से आपने को मान रहे हैं। क्यों? आपका गिरीश भाई जब आपका बच्चा पप्पा करके बोला भाई तो कौन आएगा? आप जाओगे कि नहीं जाओगे? दूसरा जाएगा? क्यों? तो आप अपने नाम के साथ तादात्म्य संबंध कर लिया। ऐसे परमात्मा के नाम हुआ तस्य वासकः प्रणवः, प्रणव माने ओंकार। तो इसको प्रणव कहिए, ओंकार कहिए, उद्गीत कहिए, एक ही बात है। छांदोग्य उपनिषद को उद्गीत कहते हैं, और उपनिषद को प्रणव कहते हैं। कहा इसको अथर्ववेदीय मांडलिक उपनिषद को ओंकार कहा। तो नाम नामी का, संगा संगी का, बच्चा वासक का, ये तादात्म्य संबंध है। तो ओंकार बोलने से परमात्मा ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ऐसे नाम किसी का राग दो बात दूसरी है। उपासना के लिए ओंकार की उपासना के बीच है ना, ओम इति एतद् अक्षरम इदम् सर्वम्। मांडलिक के उपनिषद पहला मंत्र आता है ओम इति एतद् अक्षरम इदम् सर्वम्, ओम इति उद्गीतम् उपासित, ओम इति उद्गायति तस्य व्याख्यानम्, एषा भूतानां पृथिवीरस पृथिव्याम आपोरस अपाम औषधिरस औषधीनां भागरस भाषां पुरुषरस पुरुष सामरस सैष रसानां रसतमः ओंकारः। तो ये जो है ओंकार का अर्थ व्यापक है, सामान्य अर्थ नहीं है। ये जिसको हमको देखते ना टेढ़ा मेढ़ा है, इसका नहीं है, है ना? वेदों में ओंकार का महत्व बहुत बढ़ा दिया है नहीं बात? तो ओंकार का, ओंकार कौन हुआ? वासक। ओंकार हुआ वासक, और परमात्मा हुआ वाच्य। तो वाच्य वासक भाव संबंध, शब्द अर्थ का साथ संबंध होता है, शब्द बोलने से अर्थ आ जाता है। हाँ जी, एक ही है शब्द अर्थ। शब्द हुआ ओंकार, अर्थ हुआ ब्रह्म। ओंकार के उपासना करो, ओंकार का ध्यान करो, परंतु ध्यान के साथ ध्येय का स्वरूप होना चाहिए जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। कहानी बात, तो ये जो आपको बता रहा है ना, तीन बात समझ में आई ना। एक होता है सत, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता है। एक होता है असत, तीनों काल में जिसका सकल सूरत होता ही नहीं। और एक होता है मिथ्या, समझे कि नहीं? एक काल में रहता है, एक काल में नहीं रहता है। ये जगत मिथ्या है कि असत है कि सत है? ये अज्ञान अवस्था में जगत भासता है, ज्ञान अवस्था में बाधित हो जाता है। अज्ञान अवस्था में जगत देखता है, व्यवहारिक सत्ता है। क्यों? मिथ्या वस्तु से ही व्यवहार चलता है, सत्य वस्तु से नहीं। केवल सत्य वस्तु से भी व्यवहार नहीं होता है, केवल मिथ्या वस्तु से भी व्यवहार नहीं होता है। सत्यान्विति मिथुन कृत अनादिरयम लोक व्यवहार हो, सच्चा झूठ मिला करके अनाधिकार से चल रहा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने वह जड़ चेतन गुण दोषमय विश्ववीनी करता हंस गुण गहे बारी परिहरी बारी विकार। जड़ चेतन दोषों मिला करके परमात्मा ने इस संसार बनाया। अगर आपका शरीर है जड़ है और चेतन रूपी बिजली न हो, शरीर चलेगा? ये जो शरीर चलता है ना, ये शरीर तो जड़ है, पांचों भूतों का कार्य है, ये सब जानते हैं। परंतु पांचों भूतों का कार्य होता हुआ भी शरीर कैसे चलता फिरता, लेता देता लड़ता झगड़ता है? तो चेतन है कि नहीं? तो चेतन के साथ संबंध होगा तब जड़ क्रिया करेगा, न जड़ में क्रिया नहीं होगी। अन्य बात, हाँ तो बिजली चल रही है ना, बिजली ये तार में जो करंट है, वो करंट अकेला काम थोड़े करता है। करंट से प्रकाश लेओगे? करंट लगा दो, केवल तार लगा दो और बल्ब नहीं लगा तो क्यों? करंट है कि नहीं लाए उस तार में, तो वहां लगा दो नहीं होगा क्यों? तो जैसे बल्ब के बिना प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश चाहिए तो तार के साथ बल्ब लगाओ। ऐसे ही अंतकरण भी बल्ब के साथ करंट लगाओ, तब ये शरीर चलेगा, फिरेगा, उठेगा, बैठेगा, लेगा देगा, लड़ेगा झगड़ेगा, रोएगा हंसेगा। कब? ये चिदाभास रहेगा तब। चेतन माने या चिदाभास, सामान्य चेतन नहीं लेना, याद रखना। सामान्य चेतन से नहीं होगा, चिदाभास जीव। ये ज्ञान किसको होता है? ये चिदाभास को ज्ञान होगा, साक्षी को नहीं होगा, कूटस्थ को ज्ञान नहीं होगा। क्यों? कूटस्थ तो अपना आप ही ज्ञान स्वरूप है। जो जिसने अपने को भूल गया है उसको ज्ञान कराना है। तो चिदाभास को ही बोध होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को ब्रह्म हूँ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, साक्षी होना, साक्षी कुछ नहीं करेगा। साक्षी तो दो आदमी के बीच का जो आना गवाह है, वो क्या करेगा? असंगवायम पुरुष, वो तो असंग है, साक्षी कुछ नहीं करता है। साक्षी दो वस्तुओं का गवाह है, ये पाप किया, ये पुण्य किया, ये दोनों का गवाह देगा। लड़ना कोर्ट में जो जाते हैं ना, कोर्ट में तो गवाह देता है कि नहीं? वो बोला साक्षी का बुलाओ, वहां बुलाते कि नहीं? तो फिर साक्षी को बुलाते हैं, तो साक्षी जैसा देखा ऐसा बोलना पड़ेगा। झूठ बोलेगा तो पावे बोलते हैं ना, मैं जैसा देखा जैसा सुना ऐसा सच्चा सच्चा बोलूंगा। गीता भर कसम रखकर हाथ रख करके बोलते हैं, भला भी गीता पर हाथ रखने से पहले इसको वकील ने सिखा दिया ऐसा ऐसा बोलना, ऐसा ऐसा बोलना। वो हमारे एक आदमी आया था अभी, तो महाराज मैं तो मुकदमा में हार गया, 12 साल से चल रहा था। मैंने क्यों? तो हमको वकील ने कहा सच्चा सच्चा बोल देना, झूठ नहीं बोलना। तो हमने सच्चा बोल दिया, करे तुम्हारा केस डिसमिस हो गया। तो मैंने कहा तुमको वकील ने पहले बोला नहीं ऐसे ऐसे झूठ बोलना, ऐसे ऐसे बोलना? नहीं बोला। नहीं, हमको बोला सच्चा बोलना। पता नहीं क्या हुआ, वो हार गया बेचारे। कह सब कागजात हमारे सही है बोलता, फिर भी हार गया। तो यहाँ वहां सच्चा नीति मिथुन कृत्य लगता है, झूठ सच्चा दोनों मिल करके मुकदमा जीता जाता है, केवल झूठ से भी नहीं कह सच्चा से भी नहीं, ये संसार ऐसा है। तो बात समझ में ना, सत असत मिथ्या तीन वस्तु है। मिथ्या देखेगा संसार दिखता है, क्यों मिथ्या है इसीलिए। असत नहीं दिखता है, क्यों इसीलिए शंकराचार्य महाराज जी ने एक श्लोक लिखा असत के विषय में, मृग तृष्ण अम्भसी स्नात ख पुष्प कृत शेखर ऐसा बंध्या सुतो जाति सशस्त्रिंग धनुर्धर। शब्द ज्ञान अनुवादी वस्तु शून्य विकल्पा, शब्द ज्ञान है अर्थ नहीं है। मृग तृष्णा में स्नान किया, मृग तृष्णा समझ में आते हैं, मृग तृष्णा मरुभूमि का जल, जो मरुभूमि होते हैं ना प्राचीन काल में, अभी तो समझो कि मरुभूमि में जल भी आ गया होगा, नहीं कह सकते। मृग तृष्णा माने रेतीली भूमि, उस रेतीली भूमि को गर्मी के दिनों से दूर से देखोगे जलाशय देखेगा, हाँ सागर जैसे देखेगा, पर होता नहीं। तो तृषित जो प्राणी है, प्यासा जो पानी है, वो आगे आगे जल है, आगे जल है, आगे जल है करके जाएगा, पर जल मिलता नहीं। और रेतों में नीचे भी गर्मी, ऊपर से भी गर्मी, और भीतर प्यासा की गर्मी से तड़प तड़प करके मर जाते हैं, जल मिलता नहीं। मृग तृष्णा तो एक बंध्या का पुत्र है, मृग तृष्णा में स्नान किया, समुद्र में स्नान किया, स्नान करके आकाश में बना हुआ जो लगा हुआ जो बगीचा है, वो बगीचा से फूल तोड़ करके माला बनाया, माला बना करके गले में पहना, और खरगोश का सिंह से बना हुआ धनुष बाण, वो धनुष खरगोश का सिंह, वो धनुष बाण ले करके लड़ाई के मैदान में गया, वो भविष्य नगर में प्रवेश किया है। अब बताइए कितना सत है, कितना असत है, कितना मिथ्या है, फिर कभी नहीं पूछोगे असत क्या है। धन्यवाद। जिसके तीनों काल में सत्ता ना हो, शब्द ज्ञान अनुवादी वस्तु शून्य विकल, शब्द ज्ञान है अर्थ नहीं है। हाँ मृग तृष्णा भी शब्द है, बंदा पुत्र भी शब्द है, खरगोश का सिंह भी शब्द है, खरगोश भी है सिंह भी है, खरगोश भी है सिंह भी है। देखो हम निषेध क्या करते हैं, यहाँ आकाश भी है फूल भी है, मरुभूमि है जल भी है, बंजा पुत्र है, बंजा भी है, नारी बंजा नारी भी है, पुत्र भी है, तो निषेध क्या करते हैं? हाँ याद है आपको, केवल यहाँ संबंध निषेध करता, कहा बंजा का पुत्र नहीं है, बंजा तो है, पुत्र भी हम किसी ना किसी के आएगी नहीं, तो पुत्र क्यों नहीं है? और बंजा का पुत्र नहीं है, खरगोश का सिंह है, सिंह का गाय भैंस में है, संबंध निषेध करता है, संबंध केवल संबंध निषेध करते हैं। हाँ वो सस्ती संबंध। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।